ओम शांति। आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी खुश भी रहना चाहते हैं, तो इंसान की सबसे पहली जो आवश्यकता है या उसकी इच्छा भी होती है वो सदा स्वस्थ रहना चाहता है, वो सदा खुश रहना चाहता है। हालांकि कोई भी सदा स्वस्थ रह नहीं सकता है, रह सकता है? सदा खुश भी नहीं रहते हैं। आज अगर हम देखें विश्व की हालत, अभी 2015 में एक सर्वे हुआ था, इंडिया के जो चार मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास मतलब चेन्नई, और चौथी सिटी कौन सी, मुंबई, चार जो हमारी मेजर सिटीज हैं, इनमें चार में जो एडल्ट्स हैं ना, जो वयस्क हैं, 20 साल के ऊपर के लोग हैं, तो उनका सर्वे किया गया और पाया गया कि 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिसको आप समझते हैं एंजाइना और हार्ट अटैक, बढ़ती जा रही है। 1960 में सिर्फ 100 में से एक आदमी को होती थी, 70 साल की उम्र में होती थी, और लगभग 10% को डायबिटीज है, 40% लोग मोटे हैं, मोटे समझते हैं ना, ओवरवेट है ना, आप में से कुछ लोग मोटे हैं, ओवरवेट है, हाथ उठाए जो जो समझते हैं हम ओवरवेट हैं। 100 में से 40% लोग ओवरवेट है ना भारत में, 2015 की फिगर्स में आपको बता रहा हूं। 100 में से 20% लोगों को हड्डियों की तकलीफें हैं, 25% लोगों को ये जो एसिडिटी की बीमारी होती है ना, ये वाली बीमारी है, 10% लोगों को सांस की तकलीफें हैं, 5% लोगों को कैंसर है, 5% लोगों को कोई ना कोई हार्मोनल डिजीज है, जैसे थायराइड की बीमारी होती है, 10% लोग ऐसे जिनको आंख नाक कान गले की बीमारी है, 10% लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन है। अगर हम ऐसे लगाएं तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, एवरेज में 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, मतलब एक आदमी को दो बीमारी सबको मिल, एक आदमी को दो बीमारी मिली है। आप सबके पास दो दो बीमारी हैं कि नहीं, चेक करके देखो, हाँ आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं उनका उनका ब्लड प्रेशर, 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, काफी लोगों को पता नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमारी शुगर की बीमारी है या हमें हार्ट की बीमारी है, क्योंकि बचपन से ही आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं, जीन्स माता पिता से मिल जाते हैं और बीमारियां अंदर धीरे धीरे पनपती रहती हैं, तनाव की वजह से, गलत खान पान की वजह से, और व्यायाम ना करने की वजह से, देर से सोना, देर से उठना, और कुछ एडिक्शंस जैसे धूम्रपान आज लोग करते हैं, है ना, विदेशों में तो बहनें भी बहुत धूम्रपान करती हैं ना, और भी बहुत सारी, चाय कॉफी तो सभी पीते हैं मैं समझता हूं ना, वो भी एक एडिक्शन है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना ये भी एक एडिक्शन है, कैफीन का एडिक्शन है। तो ये जो चीजें हैं, आज 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, हर आदमी बीमार है, और मन की सबको 6-6 बीमारियां सबको फ्री में मिली हुई हैं, शरीर की दो बीमारियां और मन की कितनी बीमारियां, 6 बीमारियां, कौन कौन सी, सभी जल्दीबाजी करते हैं, सभी चिंता करते हैं, सभी गुस्सा करते हैं, सभी को डर लगता है कि नहीं लगता है, सभी के मन में डर है कि नहीं है, इनसिक्योर फील करते हैं ना, तभी इंश्योरेंस कराते हैं, तो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। मैं भी ऑस्ट्रेलिया में गया था, वहां पर हर चौथे व्यक्ति को डिप्रेशन है, भारत में भी लगभग 20% लोगों को डिप्रेशन है, 10% लोग तो दवाई खाते हैं, 10% लोग नींद की दवाई खा के सोते हैं तो भी नींद नहीं आती काफी लोगों को। तो ये मन की परेशानियां हैं, मन की बीमारियां हैं। तो आज की समाज में हालांकि मेडिकल साइंस बहुत तरक्की किया है, तरह तरह के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत महंगा इलाज हो गया है, किंतु आप क्या समझते हैं इससे लोगों का इलाज हो पाएगा, आज की जो मेडिकल साइंस है उससे लोग स्वस्थ हो पाएंगे, आप क्या समझते हैं हो पाएंगे, क्या खुश रह पाएंगे? बल्कि अगर हम देखें 1960 में देखें तो आज बीमारियां ब्लड प्रेशर 1% आदमी को थे, 1% लोग को हाई ब्लड प्रेशर था, 1% लोगों को डायबिटीज थी, 1% को हार्ट की बीमारी थी, और वो भी बड़ी उम्र में जाके होती थी। आज तो 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स होते हैं, 25 साल में डायबिटीज आ जाती है, ब्लड प्रेशर 20-25 में आ जाता है, कैंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं। तो क्या कारण है, कहां पर हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं? 1970s में भारत में क्या हुआ, देश का औद्योगिकरण हुआ। जो गांव में जनसंख्या रहती थी वो फैक्ट्रीज बनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, लोग गांव छोड़ के शहर में काम करने लगे, नाइट शिफ्ट शुरू हो गई। जो परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, वो टूट गए, एकल फैमिलीज बन गए, न्यूक्लियर मतलब माता पिता बस बच्चे, पहले थे दादा दादी, माता पिता और फिर बच्चे, तीन तीन पीढ़ियां एक साथ रहती थी, सब परिवार साथ रहता था, तीन चार भाई हैं सब साथ रहते थे। फिर क्या हुआ, परिवार टूटते चले गए। जो बिलीफ सिस्टम्स थे, जल्दी सोना जल्दी उठना, मतलब रात को 9-10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, रोज सैर करना, सैर क्या उनका काम ही इतना ज्यादा था, उनके पास व्हीकल नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, नाइट शिफ्ट का मतलब ही नहीं था। तो ये सब कारणों से क्या हुआ, जो शहरीकरण, गांव का शहरीकरण हुआ, फैमिलीज टूट गई, हमारे सपोर्ट सिस्टम टूट गए, परिवार में जो मोटा खाना था, मोटा खाना समझते हैं ना, चक्की का पिसा हुआ आटा खाते थे और खूब हरी सब्जियां खाते थे, फ्रेश खाते थे, फ्रिज नहीं होते थे। फ्रिज एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का, माइक्रोवेव एक बड़ा कारण है बीमारी का, फैक्ट इंडस्ट्रीज बड़ी, पोल्यूशन भी बड़ा, ट्रैफिक बड़ा, पोल्यूशन और बड़ा, तनाव बढ़ा, उससे क्या हुआ, एक नई तरह की बीमारियां आ गई 1970 के बाद, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कैंसर एकदम बढ़ते चले गए। इनको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनका कोई इलाज नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते रहो कंट्रोल में रहेगा, इस दिन छोड़ दो अगले दिन फिर हाई हो जाएगा, ये इनक्यूरेबल डिजीजेस है। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, दवाई खाते रहो कंट्रोल में रहेगी, जिस दिन छोड़ दोगे अगले दिन फिर शुगर बढ़ जाएगी। हार्ट की बीमारी का एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास करा लो, तो भी दवाई खानी पड़ेगी, फिर बंद हो जाएंगे आर्टरीज, फिर एंजियोप्लास्टी कराओ, फिर बाईपास कराओ, कैंसर का ऑपरेशन करा लो, कीमोथेरेपी कर लो, रेडियोथेरेपी करो, फिर कैंसर आ जाएगा वापस, इलाज नहीं है। हड्डियों की बीमारी का इलाज नहीं है, सिर दर्द का इलाज नहीं है, दमे का इलाज नहीं है, लगभग 80% बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, ये सारी उम्र रहने वाली है। आयु बढ़ गई है इंसान की, किंतु जीवन दुखमय हो गया है, रोगों से ग्रस्त, बहुत महंगा जीवन हो गया, क्योंकि आज की जो मेडिकल साइंस है सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रही है, बॉडी के ऊपर। जितनी दवाइयां बनी हैं किसके लिए बनी है, किसके लिए बनी है, शरीर के लिए बनती है ना, जितने ऑपरेशन होते शरीर के ऊपर होते हैं ना, जबकि आज ही हम जान चुके हैं कि 95% अधिक बीमारियां, 95% से अधिक बीमारियां मन में पैदा होती हैं, तनाव से पैदा होती हैं, स्ट्रेस से कनेक्शन है, साइकोसोमेटिक है, साइकोसोमेटिक माना साइकी मींस माइंड, सोमा मींस बॉडी, पहले मन में आती हैं फिर शरीर में आती हैं। जब मन में तनाव उत्पन्न होता है तो शरीर में बीमारी पैदा होती है, उसी तनाव से हमारा खान पान गलत हो जाता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि मूड डिसाइड्स अवर फूड। एक तो आप सभी जानते हैं, फूड अगर आपको अच्छा मिले, भोजन अच्छा मिले, आपके स्वाद का समोसा खाने को मिले, गुलाब जामुन खाने को मिले, गाजर का हलवा खाने को मिले, आइसक्रीम खाने को मिले, तो आप खुश हो जाते, नहीं खुश हो जाते, छोले भटूरे खाने को मिले, है ना, दिल खुश होता है, नहीं होता, खुश होता है भोजन से, तो हमारा जीवन, हम खुशी आती है, मूड बदल जाता है। किंतु ये भी रिसर्च हुई है कि मूड, जैसा मूड होता है वैसा फूड हम खाते हैं, 100 से ज्यादा मूड स्टडी हुए और उसमें पाया गया, कुछ मूड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आप कड़वाहट जीवन में महसूस करते हैं, कड़वाहट समझते हैं, बिटरनेस इन रिलेशनशिप, स्पेशली संबंधों में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, संबंधों में कड़वाहट महसूस करते हैं, उस कड़वाहट को दूर करने के लिए आप उसे कैसे कंपनसेट करते हैं? मीठा खा के कंपनसेट करते हैं। उस समय मीठा खाने को दिल करता है, भले आपको डायबिटीज हो, शुगर की बीमारी, डॉक्टर ने लाख मना किया हो आपको नहीं खाना, फिर भी हम शुगर खा जाते हैं, मीठा खा जाते हैं। अगर अंदर से ड्राई महसूस कर रहे हैं, बहुत संबंध में खुश्की आ गई है, अंदर से मन में खुश्की, मेरे से कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई, मुझे कोई अच्छा नहीं, मुझे मेरे को कोई अच्छा ही नहीं समझता है, कोई मेरा दोस्त ही नहीं है, तो ऐसा, जब ऐसा महसूस करते तो फ्राइड खाने को दिल करता है, तलावा खाने को दिल करता है। जब आप बहुत बोर महसूस करते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं, तो चटपटा और गर्म खाने को दिल करता है। ऐसे बहुत सारे मूड स्टडी हुए हैं कि अगर मूड गलत हो गया तो फूड गलत जाएगा अंदर, भले ही डॉक्टर ने लाख मना किया आप नमक नहीं खाना, आपको ब्लड प्रेशर, आपकी किडनी खराब हो गई है, फिर भी हम खाते हैं। खाते नहीं खाते बताओ, खाते हैं? या डॉक्टर की मान लेते हैं, वो कहते हैं देखा, बाद में देखा जाएगा, मरना तो है ही, खा पी के मरेंगे, नहीं ऐसा? तो ये जो आज समस्या है, इस मन के अंदर जो चल रहा है, जो टेंशन है, आपको गुस्सा बहुत आता है, गुस्से का कोई इलाज है, कोई गोली है? गुस्सा आप एक गोली खा लो, सारी उम्र के लिए गुस्सा आना बंद हो जाए, ऐसी गोली बनी कोई? आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत नाजुक स्वभाव है आपका, थोड़ी थोड़ी बात किसी ने कुछ कह दिया आपको बहुत फील होता है, विचार चलने शुरू हो जाते हैं और सारा रात फिर नींद भी फट जाती है, नींद नहीं आती है। आप बहुत भावुक हैं, बात बात में आंखों में आंसू आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्या इसकी कोई गोली बनी है? गोली बनी है इसकी कि एक बार आपने गोली खा ली और नेचर ही बदल जाए आपकी? आप बहुत जल्दी में रहते हैं, हर समय टाइम की जल्दी, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, घर में चीजें जैसे रखी वैसी रखो, इसको हिलाए नहीं, माताओं को बहुत रहता है ना, घर साफ सुथरा रहना चाहिए, चमकता रहे, पर चमकता रहता है क्या? सब लोग बिगाड़ देते हैं ना, तो क्या होता है? तो ऐसा कुछ हो कि कुछ भी होता रहे मुझे फर्क ना पड़े, ऐसी गोली कोई है नहीं ना? तो ये जो हमारी जो मानसिक अवस्थाएं हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि मैंने जब MBBS किया दिल्ली से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, तो MBBS करने के बाद मैं पेशेंट देखने शुरू किया हॉस्पिटल में, तो मैं देखा हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम इलाज करते हैं, वापस वही मरीज वापस कुछ दिन के बाद तकलीफ लेके आ जाते हैं। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा चलो MD कर लेते हैं, शायद उसमें हमें और गहराई से कारण पता लगेगा बीमारियों का, हम ज्यादा ठीक कर, MD मेडिसिन कर ली दिल्ली से ही, तो देखा तो भी हमें लगा और भी कम बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। फिर मैंने कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया, तो मैं देखा और भी कम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, सचमुच में तो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम है, सिर दर्द है गोली खा लो, इतने दिन गोली खा लो, एसिडिटी बहुत बनती है चलो 2 महीने कोर्स कर लो, छोड़ दो फिर शुरू, माइग्रेन की दवाई इतने दिन खा लो, छोड़ दो फिर 15 दिन बाद वापस शुरू, मतलब कोई बीमारी का इलाज तो हम जड़ का इलाज तो कर ही नहीं पा रहे। तब मैं सोचता था और बीमारी बढ़ती जा रही है, स्पेशली जब मैं एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में दिल्ली में था, मैं देखता था हम लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं 30 साल में, 35 साल में, 36 साल, 37 साल में, कच्चे परिवार माना घर में एक बच्चा 5 साल का है, एक बच्ची 5 साल की, एक बच्ची गोदी में 6 महीने की गोदी में, शादी हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, साउंड नहीं, ये साउंड ऑन करिए पीछे वाले हैं, अभी आ रही है आवाज, ये माइक्स वहां के पीछे वाले ऑन कर, हैं जी, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे सीटें खाली हैं उसमें आ जाइए। चलिए बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आप अटेंशन रखेंगे ना, मन बुद्धि एकाग्र करेंगे ना, जो जो बहरे लोग होते हैं ना, बहरे भी अपने काम की बात सुन लेते हैं, है ना, पता है आपको, जो बहरे होते हैं वो अपने काम की बात सुन लेते हैं, ये सब आपकी काम की बातें हैं। पिछले 35 साल में जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है मेडिकल प्रोफेशन में, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं, ये सब आपके आपकी ही बातें हैं, मेरी बात नहीं है। एज ए डॉक्टर मुझे फायदा नहीं करने वाली, किंतु आपको फायदा करने वाली है। मुझे भी बहुत फायदा किया वैसे, कि तो आपको भी, आपको स्पेशल फायदा मिलेगा। तो आपके काम की बातें से अटेंशन से सुने, कान लगा के सुने, है ना, पूरा मन बुद्धि को एकाग्र करके सुने। तो जब मैं देखता था लोगों की हम एंजियोप्लास्टी बाईपास करके भेज देते हैं, लोग अपना घर बेच के भी बाईपास कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, फिर बंद हो जाती है 3 महीने में, 6 महीने में फिर बंद हो जाती है। ब्लड प्रेशर डायबिटीज का इलाज करते हैं, कंट्रोल नहीं होते लोगों की दवाई छूट जाती किसी कारण से, घर में कोई बीमारी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मर गया, दवाई लेना भूल गए, फिर सीरियस शुगर 500 लेकर के आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर 200/120 लेकर आ रहे हैं, 250/120 130 लेकर के आ रहे हैं, फिर स्ट्रोक हो जाता है, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तो लोग ऐसी ऐसी हालत में हमारे पास आते थे, मुझे बहुत अंदर से लगता था मैं क्या करूं। मैंने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर ली, आगे पढ़ाई कर ली, दिन रात मैंने टेंशन दिया, तो भी मैं लोगों को ठीक नहीं कर पा, हम मेडिकल प्रोफेशन लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहा, जड़ ठीक हो जाए बीमारी की वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि 1986 से मैं जब ऑल इंडिया शुरू मेडिकल साइंसेज में था, तो उस समय मैं, मेरा आना हुआ ब्रह्मा कुमारीज में, जा रहे थे फिल्म देखने पत्नी और मैं, उसमें मेरा बच्चा था 1-2 साल का, तो हम फिल्म देखने जा रहे थे, पर रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर था साउथ एक्सटेंशन में, तो बाहर लिखा था गेटवे टू हेवन। तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे वहां कहां लेके जा रहे हो, गेटवे टू हेल में लेके जा रहे हो, फिल्म माना गेटवे टू हेल, है ना, नरक का द्वार, और यहां तो देखो लिखा गेटवे टू हेवन, स्वर्ग में जाने का द्वार, मुझे इसमें जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है। तो हम वहां गए, और जब मैंने पहला ही चित्र देखा कि मैं कौन हूं, आत्मा और ये शरीर कार है, मैं ड्राइवर हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, परमात्मा के बारे समझा। मुझे ये जो गुरुडम था, भक्ति मार्ग, बचपन में हम सुनते थे ना, वो हमारे घर में हम भाई बहन थे और माताजी पिताजी थे, तो शाम को आरती गाते थे सभी, तो आरती में था जय जगदीश हरे आरती होती थी, उसमें एक लाइन आती थी बीच में, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तो मैं स्कूल में जब हम भी बीच में खड़े होते थे साथ में माताजी के साथ, तो वो लाइन आती थी, मैं वो लाइन नहीं बोलता था, तो माताजी देखती थी, अरे तुम लाइन नहीं, वो ये लाइन क्यों खा जाते हो, बोलते नहीं हो। तो मैं कहता था मम्मी मैं तो मूरख नहीं हूं, मैं तो खल माना दुष्ट नहीं हूं, कामी नहीं हूं, तो मैं क्यों बोलूं। तो मुझे मतलब बड़ी अजीब सी बातें लगती थी भक्ति मार्ग में, बहुत सारी बातें अजीब सी लगती थी। हनुमान जी समझ नहीं आते थे, हनुमान जी कैसे इतना बड़ा आदमी छोटा सा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, छलांग मारी रामेश्वरम से पहुंच गया श्रीलंका में। हमारे एथलीट तो जरा भी ओलंपिक में सब फेल होके आते हैं, कोई मेडल लेके नहीं आते। स्पोर्ट्स का मुझे बड़ा शौक था, तो मैं बड़ा सोचता था क्या ये, क्या हमारे, अच्छा गणेश जी का सिर काटा उसके पिताजी ने, शंकर जी ने, और जब पार्वती ने कहा आपसे सिर क्यों काटा, सिर वापस लगाओ, तो उसने सिर तो वहीं पड़ा था, क्या शंकर जी को समझ नहीं आया कि वही सिर वापस लगा दें, हाथी का सिर क्यों मंगाया। हम तो अपने मेडिकल प्रोफेशन में किसको ए ग्रुप का खून बी ग्रुप को नहीं चढ़ा सकते, है ना, थोड़ा सा रिएक्शन हो जाता आदमी मर जाए, यहां तो हाथी का लगा दिया, हाथी का लगाने की क्या आवश्यकता थी। तो मेरे को अभी अजीब भक्ति मार्ग में बड़ी अजीब अजीब बातें लगती थी, समझ नहीं आती थी, माइंड बड़ा लॉजिकल था, लॉजिक समझते हैं ना। पीछे कुछ तो समझ वाली बात हो ना, भगवान है तो भगवान का मतलब ये तो नहीं कुछ भी कर लेगा, है ना, कोई तो नियम मर्यादा वो भी पालन करे ना। तो मुझे जब ये मिला ब्रह्मा कुमार इसका मैंने देखा तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, एकदम साइंटिफिक। कोई भी देहधारी को, किसी मनुष्य को, मतलब आपको पैर नहीं छूने, उसको नमस्ते करने के बाद आप आत्मा है, आत्मा शरीर को चला रही है, सात एनर्जी से, सात आत्मा से एनर्जी निकल रही है और आत्मा शरीर को चला रही है, और परमात्मा कौन है, वो सातों गुणों का सागर है, पावर हाउस है। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, सातों एनर्जी आपके अंदर आ गई और उससे सारा शरीर आपका ठीक हो गया। बड़ी प्रैक्टिकल बात लगी, कोई आडंबर नहीं, कोई अच्छा, रावण के 10 सिर, अब रावण के 10 जिस आदमी के एक सिर हो उसको ही संभालना कितना मुश्किल होता है। अच्छा, एक करवट ऐसे लेके सो गया तो ठीक है, हम तो रोज करवट लेके सोते हैं, और रावण कैसे सिर करवट लेके सिरेगा, एक मुंह को खिलाना कितना मुश्किल है, 10 मुंह को कैसे खिलाएंगे, कौन सा मुंह बोलेगा नंबर पर, कौन सा मुंह नहीं बोलेगा, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था ना। तो मैंने यही पूछा था पहली बात बहन जी से, मैंने कहा बहन जी मुझे तीन बातें बताओ, गणेश का मैं तो गणेश कैसे, गणेश को बताया सिर हाथी का लगाया, रावण के 10 सिर कैसे लगा दिए, और हनुमान जी क्या छोटे बड़े कैसे होते थे, छलांग कैसे मार देते थे। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से मुझे समझाया इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। आप भी सेंटर पर जाके पूछना अपनी टीचर, जो भी आपकी जो टीचर्स है ना उनसे पूछ लेना। तो बहुत साइंटिफिक, बहुत वैज्ञानिक बात लगी, और उस दिन से मैंने रोज 4 बजे उठना शुरू कर दिया, जिस दिन मैंने सुना ये बात, उस दिन से रोज मुरली सुननी शुरू कर दी। और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी 4 बजे का मेडिटेशन मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की 7 बजे जो सेंटर पे होती है। जिस दिन समझ आ गया मुझे ये बात कि 4 बजे योग क्यों करना है, उससे क्या फायदा है, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, कि ये जीवन शैली, सारी बीमारियां जीवन शैली की वजह से हैं, गलत जीवन शैली हो गई है, हमारे जीने का ढंग गलत हो गया है। तो पहले दिन जो हम उनके पास गए थे तो हमने यही पूछा था उनसे कि क्या हम परमात्मा से बात कर सकते हैं। आपको पता है हम जब प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, उनकी उनको प्रार्थना करते हैं, भगवान हमसे बात नहीं करता है। कि तुम, हमने कहा नहीं, हम भगवान से बात करना चाहते हैं, क्या भगवान से बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भगवान से हम बात कर सकते हैं। तो ये जो है अमृत वेले, जो समय हम मेडिटेशन करते हैं 4 से 5, तो उसमें हम परमात्मा से कैसे बात कर सकते हैं हमने सीखा। तो हम उसी में मेडिटेशन में, जब मैं शिव बाबा से बात करता था तो पूछता था उनको कि बाबा ये सब बीमारियां, इतनी रोग बढ़ गए हैं संसार में, रोग क्यों होते हैं, कोई बच्चे जन्म से बीमार होते हैं, कैसे कैसे लोग, कैसे किसको बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बार बार आर्टरीज क्यों बंद हो जाती हैं, लोग अपना घर बेच के, बीबी के गहने बेच के ऑपरेशन कराते हैं, फिर तकलीफ हो जाती है, तो मैं क्या करूं। तो एक दिन मुझे फरवरी 1995 में मुझे बाबा से सुबह सुबह ऐसे मुझे ऐसे लगा कि बाबा मुझे सब राज बता रहा है। तो वो मुझे सारे बात पता लगी, किताबों में तो पढ़ते थे, क्योंकि वो सिर्फ वन डायमेंशनल था, बॉडी के बारे में ही होता था, मन में कैसे क्या कारण है, जड़ क्या है बीमारी की, वो नहीं पता लगती थी, किताबों में नहीं लिखी हुई, क्योंकि उसके बारे में एजुकेशन ही नहीं है। आज की हेल्थ केयर वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी की केयर है। तो तब मैंने उसके बाद एक रिसर्च प्रोग्राम बनाया, क्योंकि उसी में मैं एक भाषण कहीं दिया मैंने डॉक्टर्स की गैदरिंग में, वहां पर एक DRDO के साइंटिस्ट थे, फिर उन डॉक्टर कलाम साहब को बताया, डॉक्टर कलाम से सब बात हुई, तो डॉक्टर कलाम ने कहा डॉक्टर गुप्ता अगर आप इस एरिया में काम करते हैं, तो मैंने कहा था कि हम लोग ऐसे राजयोग मेडिटेशन, सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर, समय पर सोना, समय पर उठना, अगर हमें सिंपल चीजें, एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल लोगों को दे दें, तो लोगों की हम सब बीमारी ठीक कर सकते हैं। ऐसा मुझे परमात्मा से ऐसा उसमें अनुभव हुआ था, मैंने वो बात शेयर की थी उस लेक्चर में। उन्होंने डॉक्टर कलाम साहब से कहा, डॉक्टर कलाम साहब ने मुझे बुलाया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुप्ता अगर आप रिसर्च करें तो लाखों लोगों का फायदा हो जाएगा, और अगर आप ये रिसर्च करें तो मैं आपके साथ हूं, मेरा DRDO आपके साथ है। तो रिसर्च प्रोग्राम बनाया गया, उसमें हमने स्पेशल हार्ट के पेशेंट्स को लिया, और उसमें राजयोग मेडिटेशन, शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक सैर, मेडिटेटिव वॉक, और समय पर सोना, समय पर उठना, और व्यसन कोई ना हो, चाय कॉफी तक बंद कर दिया गया। तो वो हमने एक लाइफस्टाइल बनाया, वो प्रोग्राम रिसर्च बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दिया, और रिसर्च के करने के लिए मैंने यहां पर माउंट आबू शिफ्ट किया। दिल्ली में तो नहीं करना, मैंने सोचा दिल्ली कमर्शियल एरिया है, बहुत फास्ट एरिया है, क्योंकि मेरा यहां पर आना जाना बहुत था, तो मैं जानता था कि यहां राजयोग मेडिटेशन क्या पावर है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा दौरान ही मुझे यह सब अनुभव हुआ था। तो इसके लिए मैंने 95 अप्रैल 95 में यहां शिफ्ट किया, और फिर बड़े अच्छे अच्छे अनुभव बाबा से हमने दादियों के साथ यहां किए। और वो उस प्रोग्राम का नाम है थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल। थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल मतलब थ्री डायमेंशनल माना आत्मा का, आत्मा की केयर, मन की केयर और बॉडी की केयर, तीनों की केयर। खाली बॉडी की केयर नहीं, इंसान इस इंसान में तीन चीजें हैं, एक आत्मा है शरीर को चलाती है, किंतु मन के माध्यम से चलाती है। जैसे मैं अगर आपको कुछ चीज देना चाहूं तो कैसे दूंगा, कैसे मुझे पेन आपको देना है, कैसे दूंगा आपको, हाथ से देंगे ना, और आप कैसे लेंगे, हाथ से लेंगे। या ऐसे आप, मैं हाथ ऐसे करके बैठा रहा हूं पेन को लेके, तो आप ले सकते हैं, आप भी ऐसे करके बैठे रहे। तो आत्मा कैसे देती है शरीर को, आत्मा को शरीर, शरीर को एनर्जी देनी कैसे देगी, मन के माध्यम से देगी। और मन में चार बातें हैं, मन के अंदर चार आस्पेक्ट हैं। मन फिजिकल नहीं है, मन जैसे आत्मा को हम देख नहीं सकते, ऐसे मन को भी देख नहीं सकते। आत्मा की तीन शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार। बुद्धि तो सेंट्रल हो गई, मन, मन में चार चीजें हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं टीम, टी फॉर थॉट्स माना विचार संकल्प, ई फॉर इमोशंस भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड माना वृत्ति, और एम फॉर मेमोरी स्मृति। ये चारों चीजें मन के चार उसके एस्पेक्ट है। विचार और भावना में क्या फर्क है, जब कोई विचार को हम बहुत गहराई से करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो भावना बन जाती है, उससे हमारा इमोशनल चेंज हो जाता है। इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। आप भी देखिए, आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, रोज आपको मिलता है, आपको रोज नमस्ते करता है, तो क्या क्या आप सोचेंगे बार बार, मुझे रोज मिलता है, रोज नमस्ते करते हैं, मुझे ऐसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत प्यार से मिलता है, मुस्कुराते रहते हैं, तो क्या होता है, उसके बारे में विचार चलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी भावना क्या बैठ जाएगी, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। नहीं, कोई चीज को भी बार बार करते हैं तो भावना बन जाती है, और जब भावना को हम बार बार उस भावना को लंबा कर देते हैं तो हमारी वृत्ति बन जाती है। भावना से वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे बच्चा और एक बच्चा और एक मां भले 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, कि दोनों के मां बच्चे के बारे में बार बार विचार करती है, बच्चा मां के बारे में बार बार विचार करता है, गहराई से करता है, तो दोनों के बीच में क्या हो गई, भावना हो गई, और दोनों के बीच में फिर 1000 किलोमीटर अमेरिका में बच्चा बैठा हो, मां यहां हो, तो भी 20,000 किलोमीटर दूर से वाइब्रेशन, जिसे टेलीपैथी कहते हैं, फील होता नहीं होता, मां जो सोच रही बच्चे को टच हो जाता है, बच्चा जो सोच रहा मां को टच हो जाता है, नहीं होता है। तो ये भावना काम करती है, राइट। और विचार एक बिंदु के माफिक है ना, एक बिंदु, और भावना 10 बिंदु लगा दी है, राइट, 10 बिंदु उसने लगा दिया तो भावना बन गई ऐसे, और वही भावना लंबी कर दो, बिंदु 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 बिंदु, साइकिल सर्कल कंप्लीट हो गया, ये बन गया वृत्त, वृत्ति। जब वृत्ति हमारी, मतलब इसमें पहला बिंदु कौन सा, पहला विचार कौन सा, आखिरी विचार कौन सा पता नहीं, तो आदमी उसी विचार के अंदर घूमता रहता है, उससे वायुमंडल बदल जाता है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है, भावना से वाइब्रेशन बनते हैं और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। और उस जब वैसा वायुमंडल बन जाता है, उसमें वैसे हम कर्म करते हैं, वायुमंडल से हम कर्म करते हैं। जैसे आप यहां पर आए, आपको कैसा वायुमंडल लगा, आप बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, कैसा वायुमंडल लगा यहां, कैसा लगा वायुमंडल, शांति महसूस हुई ना, रूहानी प्यार महसूस हुआ ना, कैसे महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ, क्योंकि यहां के लोगों की वृत्ति कैसी है, शांति वाली है, प्यार वाली है, खुशी वाली है। तो उस वायुमंडल के असर में आके जो काम आप कभी नहीं करते थे, 4 बजे नहीं उठते थे, 4 बजे उठने लगे, नहीं 7 बजे क्लास में आके नहा धो के बैठने लगे, किया नहीं किया? घर में कोई 7 बजे नहा धो के आ जाओ, नहीं नहीं हमसे नहीं होता है, 7 बजे तो हम उठते हैं। तो उस वायुमंडल के असर में कर्म किया नहीं किया? आप भाषण देने वाले, खुद अपने आप भाषण देने वाले, दूसरों का भाषण सुनते हैं कभी? नहीं नहीं बोर का बोर हो गए, बहुत बोर हो गए, यहां बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे भाषण सुनते रहे, किया ना किया? तो वायुमंडल के असर में आके जब हम वृत्ति से वायुमंडल बनता है, उस वायुमंडल में हम कर्म करते हैं, एक बार कर्म करते हैं उससे इंप्रेशन बनता है। अगर उसी इंप्रेशन को कई लोग कह दें ये बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये तो अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काम तो खराब होना ही है। 10 लोगों ने कह दिया आपको, सुबह बिल्ली ने रास्ता काटा काम नहीं हुआ, 10 लोगों ने कह दिया काम नहीं होगा, ये तो खराब काम होगा ही नहीं, तो आपका बिलीफ सिस्टम बन गया, और वही चीज बार बार किया तो आपकी आदत बन गई, पर्सनैलिटी बन गई, राइट? तो इस तरह से रिकॉर्ड होता है हमारे अंदर इंप्रेशन, एक बार करने से वही चीज को 10 लोग बार बार कह दे तो बिलीफ सिस्टम बन गया और फिर आपके संस्कार बन गए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हमारी जो ये जो बीमारियां आ रही हैं, क्यों है? मन की बीमारी आई हमको, या तन की बीमारी क्यों आई? इसी कारण आई, हम इस शरीर अपने को शरीर समझते रहे, हम अपने को डॉक्टर इंजीनियर समझते रहे, मां समझते रहे, बाप समझते रहे, टीचर समझते रहे। पैदा हुए तो टीचर थे आप? जो पैदा होते समय मां थी, हाथ उठाओ, कोई थे मां? अभी क्या दिमाग में रहते, मैं तो मां हूं, मैं तो पत्नी हूं, नहीं? पत्नी सदा पत्नी रहती है क्या? आप ये सदैव सदा मां रहती हैं? ये तो हमारा रोल है ना समाज में। क्या एक डॉक्टर डॉक्टर ही है, वो किसी का पति भी है या किसी की पत्नी भी है, है ना? वो बाप भी है या किसी का मां भी है, है ना? किसी का बेटा बेटी भी है, किसी का दोस्त भी है, कितने रोल हैं? लेवल है ना ये, तो समाज ने दिया, ये तो मैं नहीं हूं, ये देह भी मैं नहीं हूं, आत्मा निकल जाए तो डेड हो जाती है, कितना ही हमसे प्यार हो हम उसको घर में रखते नहीं है, जला देते हैं, तो ये भी मैं नहीं हूं। तो ये जो है अपने अंदर से ये फीलिंग, ये जो सत्य 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 की परिभाषा क्या है, हमने असत्य को ही हम इंटेंसली सोचते रहे हैं गहराई से, हमारी सारी सारी इस देह की ही भावनाएं बन गई हैं, रोल की भावनाएं बन गई हैं, मेटीरियल हमारे घर में चीजें ये हैं, जो पैसा है उसके बारे में ही भावनाएं बन गई हैं, उसी के बारे में हमारी वृत्ति बन गई है, वैसा ही वायुमंडल हमारे आसपास बन गया, हमारे घरों में बन गया, हमारे ऑफिस में बन गया, और वैसे ही हमारे इंप्रेशन बन गए, वैसे ही बिलीफ सिस्टम बन गए, और वैसे ही हमारे पर्सनैलिटी बन गई। और जितना भी ये जो देह का भान है, रोल का भान है, जो भी मटेरियल है, जो भी हमारे पदार्थ हैं, घरों घर हैं, कारें हैं, पैसा है, जायदाद है, ये सब स्टेबल है कि अनस्टेबल है? सदा रहने वाले कि हिलती डुलती रहती हैं? हिलती डुलती रहती है ना, सदा ही रहती हैं। 500 रुपए का नोट रहा क्या? 1000 रुपए का नोट रहा क्या? रहा, बदल गया ना, आपने घर में जोड़ जोड़ के रखे थे, माताएं तो बहुत जोड़ के रखती है ना, तो क्या हुआ, हिल गया? नहीं हिल गया, है ना? निकालना पड़ा, एक कोने में छिपा के रखा तो वो भी निकालना पड़ा? नहीं निकाला, पूरा बैग छान के करके इधर से उधर से अलमारी में, उस कागज के नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, कपड़ों के अंदर, है ना, कहां कहां रखा था, सब निकाले? निकाले, एक एक कपड़े से छान के निकाला? निकाला। तो अनस्टेबल है ना, तो ये सारा जो अनस्टेबल है, उस अनस्टेबिलिटी से हमारा मूड ऊपर नीचे होता है। सत्य की ये मेडिटेशन क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन की परिभाषा क्या है? मेडिटेशन का अर्थ है टू रियलाइज द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करना, टू लिव द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, सत्य को जीना, सत्य बनना, बीइंग द ट्रूथ, सत्य को जीना, सत्य को अनुभव करना, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन कोई आंख बंद करके बैठना, हाथ जोड़ना, ताली बजाना है ना, या कोई मुद्रा लगा के बैठ जाना, या लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देना, वो मेडिटेशन नहीं है। कोई आसन कर लेना, ये मेडिटेशन नहीं है। पद्मासन में बैठ जाना, ये मेडिटेशन नहीं है। सूर्य नमस्कार मेडिटेशन नहीं है। सत्य कुछ, सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य माना जो इटर्नल है, अविनाशी है, कभी ना मरे, जो कभी ना बदले। दो परिभाषा, दो विशेषता, एक कभी ना बदले और दूसरा कभी ना मरे। तो क्या चीज है हमारे पास जो कभी नहीं मरती है? क्या है? आत्मा। पहला सत्य है मैं आत्मा हूं, दूसरा सत्य क्या? परमात्मा। परमात्मा कभी मरता नहीं, जन्म मरण से न्यारा है। तीसरा सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध सदा सत्य है। देह के संबंध समाप्त हो जाते हैं, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, शरीर छोड़ जाते हैं, दोस्त शरीर छोड़ जाते हैं, कि तुम परमात्मा कभी मरता नहीं, उसका संबंध सदा है। और डी ड्रामा, संसार रूपी नाटक, इसमें कर्म सत्य है। आपने जो कर्म कर दिया उसका फल ना मिले आपको हो नहीं सकता है। बुरा किया कहीं छुप जाओ, आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म किया कहीं छुप जाओ, कितना ही अपने को छुपा लो फल मिलेगा। ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कर्म के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। अगर आपने किसी 100 साल पहले 100 रुपया उधार लिया था और उसका वापस नहीं किया, 100 साल में कितना ब्याज हो गया पता है आपको? हिसाब किताब क्या हो गया? 20,40,00,000 रुपया। तो आपको, आपका बच्चा बन के आएगा, आपका दोस्त बन के आएगा, आपका पति बन के आएगा, पत्नी बन के आएगा, या मां बाप बन के आएगा, और आपसे वो 100 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में ब्याज कितना लगेगा? 20,40,00,000 रुपया। आप सारा उम्र देते रहो तो भी पूरा नहीं होता, तभी आपसे संतुष्ट नहीं होते रिश्तेदार। संतुष्ट होते हैं आपके बच्चे, आप उनके सब कुछ करते हो तो भी संतुष्ट होते हैं क्या? आपने कितना खर्च किया? 1,00,00,000 खर्च किया, 19,00,00,000 कौन देगा? इसलिए कहते क्या किया पापा मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया आपने, तो देखो ना दूसरे लोग कैसे करते हैं, मेरा जीवन ही खराब हो गया आपके घर में आके। तो बच्चे खुश नहीं होते, होते हैं क्या? पति पत्नी से खुश होता है क्या? पत्नी पति से खुश होता है, खुश होती है क्या? नहीं खुश होती है क्या? जो खुश होते हैं हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाएगा। ऑटोमेटिक झूठ मूठ तो उठा देंगे है ना, कोई नहीं उठाया, क्योंकि हिसाब किताब बहुत कड़े हैं। एक बार गाली दी होगी कितनी कितनी गाली खानी पड़ेंगी, एक बार दुख दिया हो कितना ब्याज हो गया। तो ये हिसाब किताब है ना, और इसलिए जो भी हुआ है अभी तक अच्छा हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है, कोई दोषी नहीं है। किसी ने आपको धोखा दिया, चीट किया, दुख दिया, गाली दी, ठीक दिया, क्योंकि आपने दिया था इसलिए दिया, ब्याज के साथ दिया, और दे रहा है या दे रही है, राइट? नहीं, गलत हुआ क्या? सारी दुनिया कहां फंसी पड़ी है? सारी बीमारी क्यों आ रही है? उसने मेरे को बहुत दुख दिया, उसने मेरे को ये ऐसा किया, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को ये किया, उसने मेरा जीवन खराब कर दिया। अरे तुमने भी तो जीवन खराब किया था 100 साल पहले। गीत क्या है? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। नहीं तो प्यार तो निभाना पड़े, नहीं निभाना पड़े। तो ये जीवन है, ये जीवन शैली है। तो ये सारी बीमारी यहां से आ रही है। 90% विचार कहां से आ रहे हैं? पास से आ रहे हैं। सारा मैट्रिक्स यहीं पर है। सारी बीमारी, मन की बीमारी का कारण, तन की बीमारी का कारण, सारा यही है, यही है। क्योंकि हमारे अंदर एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। हाइपोथैलेमस दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, उसमें आत्मा बैठी है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, सारे बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। उसके नीचे पीनियल ग्लैंड है, नींद का हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड है गले में, हमारी एनर्जी का मीटर है। ठीक काम करे तो हमें एनर्जी है, ना काम करे तो एनर्जी नहीं, काम करने को दिल नहीं करेगा। उसके पीछे पैराथायराइड है, हड्डियों में कितनी ताकत होगी, कैल्शियम होगा, वो ग्लैंड डिसाइड करेगी। पेनक्रियाज यहां पे है, इंसुलिन, शुगर का लेवल कैसा रहेगा, उसके लिए एनर्जी होगी नहीं होगी, वो यहां से डिसाइड होगा। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, सारी दिन में जो भी चैलेंज हमें फेस करने हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड डिसाइड करेगी। सुबह 8 बजे तक जो भी सोचोगे वो हार्मोन निकलता है वहां से, उठने के बाद आधा घंटा बाद निकलना शुरू होता है, आपके जो विचार सुबह से उठ के चलते हैं, कैसी भावनाएं पैदा होती, जो चीजें याद करते हो उसके अनुसार वो हार्मोन निकलते हैं, 8 बजे तक निकलते हैं। और फिर हमारे हमारी जो मेल या फीमेल ग्लैंड होती है वो 7 ग्लैंड्स हैं। अगर यहां शांति है, मैं आत्मा हूं और शांति प्यार खुशी की अनुभूति है, तो ये ग्लैंड, ये 7 ग्लैंड हार्मनी में काम करती हैं। जीवन एक संगीत बन जाता है, सारे गामा पादा निशा, हर चीज रिदम में लगती है, बहुत स्मूथ लगती है। और अगर थोड़ी चिंता है, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा डर है, थोड़ी सी उदासी है, तो ये 7 ग्लैंड के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और सारा जीवन शोर बन जाता है, शोर कोलाहल केओस बन जाता है। हर बात में चिड़चिड़ापन, हर बात में रोना, हर बात में जल्दीबाजी, हर बात में मतलब बस मैं बस बकरे की तरह मैं करते रहते सारा दिन। मूड खराब हो जाता है सारा दिन, फिर गलत खाना खाते हैं, विचार तेज चलते, नींद नहीं आती, रात में सोने के समय नींद नहीं आती, काम दिन में नींद आती, काम करते समय नींद आती, फिर शरीर में जान नहीं तो चाय पीने को दिल करता है, कॉफी पी के धक्का लगा के अपनी गाड़ी को चलाते हैं। तो ये हमारे कारण होता है। फिर उसको टेंशन को दूर करने के लिए हम कुछ ना कुछ दूसरे नशे ढूंढते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये पीते हैं, मूड को ठीक करने के लिए कुछ और खाते हैं, इस तरह से बीमारियां पैदा होती हैं। और जब सत्य माना, ये सत्य को मैं कहता हूं ABCD, ज्ञान। पहली जो आत्मा से एनर्जी निकलती है वो ज्ञान है, ABCD, राइट। आत्मा, ए फॉर आत्मा, बोलो ए फॉर आत्मा, बोलो। नर्सरी के बच्चे कैसे बोलते हैं, ए फॉर, बी फॉर बाबा, बी फॉर बाबा मीन्स परमात्मा, सी फॉर कनेक्शन, हमारे संबंध परमात्मा से, और डी फॉर ड्रामा। यही मेडिटेशन है। जितना आप ABCD को जीना शुरू कर दो, इसको अनुभव करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, सत्य यही है, इससे आपके अंदर पवित्रता आएगी, मतलब मन बुद्धि शांत होता जाएगा, आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे। अभी प्रेजेंट में नहीं जीते हो, 90% पास्ट में जीते हो, 5% भविष्य में जीते हो, सिर्फ 5% ही प्रेजेंट में रहते हो। इसलिए आउटपुट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, 5%। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमको प्रेजेंट में रहना सिखाता है। मेडिटेशन हमारे सिर्फ पॉजिटिव सोचना सिखाता है। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा ठीक हो जाएगा, जीवन संगीत बन जाएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी जो 30-35 रहती है, एक मिनट में 35 विचार आते हैं, आपके बजाय आपको 5 ही विचार में एक मिनट में आएंगे। हर समय आप बिजी महसूस करते हो, बिजी फीलिंग कौन सी है, बिजी फीलिंग काम बहुत करते हो ऐसा नहीं है, आपको काम तो कुछ भी नहीं करते हो, बहुत थोड़े काम करते हो, गप्पे ज्यादा लगाते हो, टेलीफोन पे ज्यादा बातें करते हो, फालतू बातें, वो भी काम की बातें नहीं, फालतू बातें करते हो, व्हाट्सएप ज्यादा देखते हो, फेसबुक पे ज्यादा रहते हो, है ना। जो इजी और बिजी में क्या फर्क है, जब आपके मन में 30 विचार चल रहे हैं तो आप बिजी महसूस करते हैं, कुछ ना करते भी बिजी महसूस करते हैं। टेलीफोन पे आता ना, वो मुझे आपसे मिला, नहीं नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत बिजी हूं। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी, थीटा रिदम में आ जाओगे, डेल्टा रिदम में आ जाओगे, तो इजी है, क्योंकि स्पेस है, एक मिनट में सिर्फ 5 ही विचार चल रहे हैं। हमारी दादी की, दादी 101 साल की है, उनके पास कभी जाओ, दादी कहती मैं इजी हूं सदा, मैं बिजी नहीं हूं, 101 साल की है, इजी है। पूरे 140 देशों में सेंटर हैं, 11,000 सेंटर्स हैं, इतने सारे भाई बहन मिलने आते हैं, इजी है, बिजी नहीं है। आपके घर में 2 बच्चे हैं, बहुत बिजी हो, वो उसके इतने सारे हैं, इतने सबको संभालना है, तो बिजी नहीं है। तो ये इजी और बिजी फीलिंग क्या है, मन की फीलिंग है, राइट। मेडिटेशन करने से आपकी फ्रीक्वेंसी 3-4 हो जाएगी, मन में सिर्फ इसेंशियल विचार ABCD आएगा, EF नहीं आएगा, ई माना एक्स्ट्रा, एफ माना फोर्स, जबरदस्ती खत्म हो जाएगी। तो ये मेडिटेशन के द्वारा जब आपके अंदर आएगा, तो अपने को 4 बजे उठ के जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो क्या करना होता है, ये लाइफस्टाइल अपनाना हमको, ये स्वस्थ जीवन शैली है। स्वस्थ माना स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित, तो स्वस्थ माना आत्मिक स्थिति में स्थित जीवन शैली अपनाओ, राइट। थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर माना स्पिरिचुअल केयर, आत्मा को शक्तिशाली बनाओ परमात्मा की याद से, मन को पॉजिटिव बनाओ, टीम को पॉजिटिव बनाओ। मैच जीतना है तो जीवन एक मैच है, टीम आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। और फिर शरीर के लिए भोजन, सैर, नींद और प्रॉपर दवाई। अब मैं इसको आपको अगले 5 मिनट में समझा देता हूं सारी बात। 4 बजे आप उठो, मुंह हाथ धो लो, ब्रश कर लो, बालों को कॉम कर लो। किससे मिलने जा रहे हो? परमात्मा से मिलने जा रहे हो। आपको अगर नरेंद्र मोदी से मिलना हो तो कैसे उठे? उठ के मुंह ऐसे बिना धोए गुना कुल्ला किए जाके उससे हाथ मिलाएंगे? क्या करेंगे? प्यार होके जाएंगे ना। तो ऐसे ही अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है आपको 4 बजे। और 4 बजे क्यों याद करना है? जब आप 4 बजे उठते हो आपकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 2 या 3 होती है, डेल्टा रिदम में आप उठते हो। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 0 है, ब्रह्मा बाबा की 1 है। आपकी 2 होगी तो कनेक्शन होगा, तो बातचीत होगी। आपके दिन में 15 है, 20 है, 30 है रहती है, तो 30 और 2 में 1 में क्या कनेक्शन होगा? कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। फ्रीक्वेंसी आपकी भी 2 होनी चाहिए, तब कनेक्शन होगा। और सुबह का समय सबसे इसलिए बेस्ट है, पर आलस नहीं होना चाहिए। तो मुंह हाथ धो के ब्रश करके बालों को टॉवल से रगड़ लें और कॉम कर लें और आराम से सोफे पर जाके बैठ जाए। कोई आसन लगाने की आवश्यकता है, कोई मुद्रा लगाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही बैठ जाए बड़े आराम से कमर सीधी करके, और अपने अंदर एबीसीडी को रियलाइज करना शुरू करो। जैसे एबीसीडी को रियलाइज, थॉट स्पीड कम होती जाएगी, 1-2 होगी, परमात्मा से कनेक्शन लग जाए, करंट आनी शुरू हो जाएगी, ये ज्ञान आपको महसूस होने लगेगा, मन बुद्धि पवित्र हो जाएगी, शांति। शांति माना सर सत्य संकल्प रमण करोगे, प्रेजेंट में आ जाओ, पास्ट और फ्यूचर खत्म हो जाएगा। प्यार, प्यार माना एक्सेप्ट, सब कुछ एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, जो जैसा भी एक्यूरेट है। प्यार की डेफिनेशन क्या है? अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच अदर इन द फैमिली एंड एवरीवन फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड। बिना शर्त के हर आत्मा को आदर के साथ एक्सेप्ट, स्वीकार करो और उसकी केयर करना। परिवार में भी, कई लोग दुनिया में करते हैं, परिवार में नहीं करते हैं। दुनिया के लिए बहुत अच्छे, घर में आके लड़ाई डिशुम डिशुम है ना, वो नहीं डिशुम डिशुम ऐसे नहीं, मन बातों में डिशुम डिशुम करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते, बातों में डिशुम। उसने जवाब दिया 1 तो 2 जरूर देंगे, है ना, चुप नहीं रहेंगे, तो वो नहीं। अनकंडीशनल आदर के साथ, इसको कहते हैं प्यार। जब तक आपके मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति भी घृणा है, तब तक परमात्मा का प्यार महसूस नहीं कर सकते हो। परमात्मा का प्यार आ रहा है कि तो परमात्मा का प्यार कौन महसूस करता है? जो सबको माफ कर देता है, सबको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब आप ऐसा प्यार कर लेंगे तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, आप अपने आप को परमात्मा के नजदीक महसूस करेंगे। वो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय। और आनंद माना आनमाना बंधन, आपको कोई बंधन महसूस नहीं होगा, देह का और देह के संबंध होगा, आप आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाएंगे। उसमें आत्मा परमात्मा की बात होती है आपस में, आनंद की स्थिति में। आप जो विचार करेंगे वो परमात्मा को टच होंगे, परमात्मा से भी विचार आपको आएगा, आपके जवाब, आपके प्रश्न का जवाब आएगा। और आप जो फिर उसको टच होगा, आपका प्रश्न उसका आंसर आपको आएगा, ऐसे बातचीत होगी। तो यह साइंस में बताया गया कि अगर 20 मिनट आप 4 से 5 के बीच में ऐसी स्थिति में रह जाओ, आनंद की स्थिति में, तो आपके 18 हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिनियल से बैलेंस में निकल जाएंगे। अगले 24 घंटे में आपकी सारी मन और तन की बीमारी कम हो जाएंगी। अगर ये आपने अमृत वेला मिस कर दिया, सोते रहे, तो आपकी सारी बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए कहा जाता था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज सब लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, हमें 10 बजे सो जाना, 10 बजने वाले हैं, है ना, अभी जाके सो जाना। और सुबह सोने के पहले क्या करना होता है? सोने के पहले अपने आप को ऑडिट करना चाहिए, साथ में क्या गलतियां हुई, क्या ठीक हुआ देखना चाहिए, लेटर लिख देना चाहिए, साइन करके भगवान को देके फाड़ के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, और फिर 2 मिनट परमात्मा को याद करके सो जाना चाहिए। ये सो ऐसे करना चाहिए। तो ये 4 से 5 करो, फिर 5 बजे तक, 5 से 8 बजे तक चुप रहो, क्योंकि जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी विचार लाओगे, भावना लाओगे, उसका असर आपके इस पे पड़ेगा, एड्रेनल ग्लैंड पे पड़ेगा। तो 100% पॉजिटिव सोचो 8 बजे तक। 8 बजे के बाद जो मर्जी सोचो आप। 8 बजे तक अखबार मत पढ़ो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत उठाओ, जहां तक हो सके। बहुत इमरजेंसी तो अलग बात है, इन तीन चीजों का परहेज करो, क्योंकि इसमें नेगेटिव टीम होती है, दुनिया के विचार होते हैं, दुनिया की भावनाएं, टेलीफोन पे भी दुनिया की भावनाएं होती हैं, उसको मत सुनो। अगर तो हम क्या करते हैं, हम सात से आठ मुरली सुनते हैं परमात्मा के महावाक्य, जो कि 100% पॉजिटिव टीम है। परमात्मा के महावाक्य सत्य हैं, सत्य से पॉजिटिव टीम पैदा होती है, तो वो जो है टीम हम आठवें तक रखते हैं, उससे हमारा एड्रेनल हार्मोन बैलेंस में निकलता है। तो सातवें एनर्जी जो परमात्मा से आई आत्मा में, वो शरीर के हर सेल में पहुंच जाती है। फिर क्या करना है उसके बाद, ये एनर्जी मेरे शरीर के बाहर आ जाए उसके लिए क्या करना है, फिजिकल बॉडी के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध माना परमात्मा की याद में बनाना, परमात्मा की याद में खाना, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला, अंकुरित दलिया, सब्जी, रोटी, चावल है ना, दूध, ये चीजें सात्विक भोजन है। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह जैसे होते हैं, तो ये सात्विक भोजन है, चबा चबा के खाना चाहिए, चुप रह के खाना चाहिए, बोलते हुए के नहीं खाना चाहिए। अगर जब बोलते हुए खाते हैं तो आधा हवा हवा साथ में खाते हैं, तो पेट में खाना और हवा साथ साथ जाएगी तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं। मुंह में भोजन डाला, मुंह बंद किया, अंदर अंदर चबाओ, अच्छे चबा के, और खाना हमेशा पीना चाहिए, मतलब खाना में इतना चबाओ होता है निगलना ना पड़े, पानी खाना चाहिए, राइट, मतलब घुट घुट करके पीना चाहिए। तो परमात्मा की याद में भोजन खाओ, ठीक है, शुद्ध सात्विक भोजन, फिर शुद्ध सात्विक सैर, सुबह चार से पांच मेडिटेशन किया, नहा धो के तैयार हो गए, अगर गर्मियों में छह से सात के बीच में सैर कर लो, और गर्मी सर्दियों में आठ बजे मुरली के बाद, परमात्मा के मां आठ बजे के बाद सैर करो, मेडिटेटिव वॉक है हमारी। परमात्मा शुद्ध सात्विक माना, शुद्ध माना मन बुद्धि को शुद्ध बना के परमात्मा की याद में सातों गुणों का अभ्यास करते हुए सैर करो, ये सैर करो, ये 45 मिनट सुबह सैर करो, कम से कम आधा घंटा तो हर एक के लिए करना आवश्यक है, सारे बॉडी के टॉक्सिन साफ हो जाते हैं, शुद्ध सात्विक सैर। तीसरा शुद्ध सात्विक नींद, सोने के पहले मैं कहता लेटर लिखो, मन को शुद्ध बनाओ, फिर सातों गुणों का तीन मिनट अभ्यास करो, परमात्मा से लेके एनर्जी और परमात्मा की गोद में सो जाओ। ये जो आपकी बेड है ना, बेड गैरेज है, उसमें एक कार को पार्क करो, हमारा घर जब आप ये सीखेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, एक सूक्ष्म वतन है, वहां पे हमारे जो ब्रह्मा बाबा फरिश्ते के रूप में रहते हैं, तो वो सूक्ष्म वतन हमारा घर है, असली हमारा बेडरूम है, और उसमें बाबा जो है वो हमारा बेड है, उसकी गोद में सो जाओ। तो आप सोने के पहले तीन मिनट अभ्यास करेंगे तो आप ऐसे जाना सीख जाएंगे। तो ये हमारी नींद होनी चाहिए, अपने आप को टर्स पे सोना, आप टाइम दे दो, चार बजे उठने, चार बजे अपने अपने आप आंख खुलेगी बिना बिना अलार्म के। और चौथी बात, कोई भी अगर आपको शरीर में बीमारी है, तन में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्ट की बीमारी या कुछ और बीमारी, उसकी दवाई ले लो। कई लोग रोके दवाई खाते, रोके मत खाओ, है ना, उसको भी प्यार से दृष्टि देके खाओ, और देखेंगे धीरे धीरे जब आप इसको फॉलो करेंगे, जब ऐसा शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद करेंगे, तो क्या होगा, आपकी सातों एनर्जी बॉडी के बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, और आपके आसपास इकट्ठी हो जाएंगी सातों एनर्जी, और कवच बन जाएगा, वो आपकी हीलिंग करती रहेगी हमेशा, और आसपास के जो पॉल्यूशन है, आसपास के लोगों की गलत भावनाएं, उनका असर आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस तरह से ये जीवन शैली, इसको हम थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल कहते हैं, इससे आपका हार्ट भी हेल्दी हो जाएगा, आपका मन खुश हो जाएगा, हैप्पी माइंड और हेल्दी बॉडी, जो भी बीमारियां हैं मन और तन की सब ठीक हो जाएंगी। तो इस जीवन शैली को आप अपनाइए, इससे लोगों के 7500 से अधिक लोगों की हार्ट के जो हार्ट अटैक जिनको आए थे, आर्टरीज बंद थी, वो खुल गए, उनके ब्लॉक्स खुल गए, लोगों की डायबिटीज की दवाइयां खत्म हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, लोगों कैंसर भी ठीक हो जाते हैं, अस्थमा ठीक हो जाते हैं। तो कोई बीमारी भी आप ठीक कर सकते हैं, किंतु लगन लगाने की बात है। इस तरह के विचारों को अगर आप इंटेंस, ये जो विचार में आपको मुरली के जो विचार, उनको इंटेंसली गहराई से जाएं, उससे आपकी भावना बदलेगी, आपके स्पिरिचुअल भावनाएं पैदा होंगी, स्पिरिचुअल एटीट्यूड बनेगा, और स्पिरिचुअल इंप्रेशंस बनेंगे, स्पिरिचुअल आपके अंदर बिलीफ सिस्टम आएंगे, और स्पिरिचुअल मेमोरीज बनेंगे, पर्सनैलिटी बन जाएगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सतीश भाई जी का, एक बार जोर से ताली के द्वारा हम अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे।